नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। सोशल मीडिया पोस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह निर्णय पश्चिम एशिया संकट के बीच लिया गया है। उन्होंने कहा कि डीजल के निर्यात पर 21 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर 29 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर शुल्क लगाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई। इसमें निर्णय लिया गया कि वैश्विक स्थिति के कारण पेट्रोल, डीजल और ATF की कीमतों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए।
आज इस निर्णय के कारण सप्लाई कमी नहीं होगा, जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा और ATF बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत देश का एयरक्राफ्ट और हमारी कंपनियों का एक ATF मिलना आवश्यक। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इमरजेंसी में एक मीटिंग बुलाई और इस विषयों के ऊपर चर्चा गोष्ठी करके तुरंत निर्णय किए।
लॉकडाउन की अफवाहों को निराधार बताते हुए श्रीमती सीतारामन ने लोगों को आश्वस्त किया कि कोविड महामारी के दौरान लागू किए गए लॉकडाउन जैसा कोई लॉकडाउन नहीं होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में जारी रुकावट के बीच दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने के बजाय खुद इसका असर झेलने का विकल्प चुना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि सरकार ने अपने कर राजस्व में भारी कटौती की है, जिससे तेल कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग 24 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 30 रुपये प्रति लीटर पर होने वाले भारी नुकसान को कम किया जा सके। सरकार ने राज्यों के लिए वाणिज्यिक LPG आवंटन को बढ़ाकर 70% करने का निर्णय लिया है। इसमें से 20% आवंटन इस्पात, ऑटोमोबाइल, कपड़ा और अन्य श्रम प्रधान उद्योगों को दिया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इसका उद्देश्य वाणिज्यिक LPG की आपूर्ति को सुगम बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पश्चिम एशिया संघर्ष पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे और राज्यों की तैयारियों तथा योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सरकार ने बताया है कि देश में पिछले एक दशक में यूरिया का घरेलू उत्पादन 230 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 315 लाख मीट्रिक टन हो गया है। आज लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 2014 से गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी, रामागुंडम और पानागढ़ सहित विभिन्न स्थानों पर कई नए उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों, अनुसंधान और विकास पहलों के कारण शुष्क भूमि और वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल उत्पादन में 82% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की कृषि भूमि का 48% हिस्सा शुष्क भूमि है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने की समय सीमा 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर फिलहाल बमबारी नहीं करेंगे। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP के संसदीय दल के नेता बालेंद्र शाह ने आज नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेंद्र शाह को नेपाल का नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, असम, मेघालय और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।